शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प विचार से। मान लीजिए कि आपको किसी पुराने घर की धूल भरी अटारी में एक बहुत पुरानी डायरी मिलती है
अच्छा
और आप उसे खोलते हैं तो उसमें लिखा है कि आज फला कुएं से पानी निकाला गया, या आज परिवार में जमीन को लेकर कोई बड़ा झगड़ा हो गया। तो पहली नजर में कोई भी इसे पढ़ेगा तो यही सोचेगा ना कि ये तो बस मतलब किसी आम इंसान की उबाऊ जिंदगी का हिसाब है, या फिर किसी टीवी सीरियल की तरह एक पारिवारिक कलह का विवरण।
बिल्कुल, मतलब ऐसा सोचना बहुत स्वाभाविक भी है। सतह पर अगर हम देखें तो ये एकदम साधारण और रोजमर्रा की बातें ही लगती हैं, जिनका शायद इतिहास के बड़े पन्नों में कोई खास महत्व न हो।
हाँ
लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, मतलब क्या होगा ये छोटी छोटी और अस्त व्यस्त लगने वाली घटनाएं असल में एक बहुत बड़ी और दुनिया को बदल देने वाली योजना के गुप्त हिस्से हों।
आह, यही वो मूल बिंदु है जी, और यहीं से हम आज के इस गहन चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। आज हमारा मुख्य फोकस डॉक्टर रॉबर्ट वेनॉय के उस बेहद दिलचस्प व्याख्यान पर है, जो इस बात का विश्लेषण करता है कि पुराने ऐतिहासिक धर्म ग्रंथों को कैसे पढ़ा जाना चाहिए।
विशेष रूप से ओल्ड टेस्टामेंट को।
बिल्कुल, और दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर वेनॉय का जो विश्लेषण हम आज देख रहे हैं वो किसी भी धार्मिक बहस या विचारधारा के पक्ष में नहीं पड़ता।
हाँ, ये बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। वो एक इतिहासकार की तरह एकदम निष्पक्ष रूप से ये देखते हैं कि इन पाठों का निर्माण कैसे हुआ।
और इन्हें पढ़ने के अलग अलग तरीके क्या रहे हैं, तो चलिए सीधे इतिहास के पन्नों में चलते हैं। जेनेसिस 16 की उस घटना से शुरू करते हैं जो अब्राहम के जीवन की मतलब सबसे बड़ी भूलों में से एक मानी जाती है।
हाँ, जेनेसिस 16 की यह घटना वाकई में बहुत जटिल है और काफी भारी भी है। कहानी कुछ इस तरह है कि अब्राहम की पत्नी सारा वो बांझ थी और 10 साल का एक बहुत लंबा समय बीत चुका था, उनके कोई संतान नहीं थी। तो उस समय की सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए सारा एक एक बड़ा फैसला लेती है।
और वो अपनी मिस्री दासी हगार को अब्राहम को सौंप देती हैं, है ना,
हाँ
ताकि उसके जरिए उन्हें एक वारिस मिल सके।
बिल्कुल,
मतलब अगर उस दौर के सामाजिक रिवाजों को देखें तो ये कोई अनोखी बात नहीं थी शायद।
हाँ, और सतह पर यह योजना सफल भी प्रतीत होती है।
हाँ, क्योंकि हगार एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम इश्माइल रखा जाता है, लेकिन
लेकिन परिणाम विनाशकारी होते हैं।
एकदम
मनोवैज्ञानिक रूप से अगर हम देखें तो जैसे ही हगार गर्भवती होती है, उसके मन में अपनी मालकिन सारा के प्रति सम्मान लगभग खत्म हो जाता है।
वो खुद को श्रेष्ठ समझने लगती हैं।
बिल्कुल, और इससे सारा और हगार के बीच और साथ ही सारा और अब्राहम के बीच भी एक बहुत गहरी दरार आ जाती है।
मतलब एक बहुत बड़ा पारिवारिक ड्रामा शुरू हो जाता है।
हाँ, और सारा हगार के साथ इतनी कठोरता से पेश आती है कि हगार को घर छोड़कर रेगिस्तान में भागना पड़ता है।
बाप रे,
तो ये सिर्फ एक घर का झगड़ा नहीं था, ये इंसानी कमजोरी और अहजल्दबाजी का एक बहुत बड़ा उदाहरण था।
लेकिन यहीं पे कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। ओम जेनेसिस 17 में ईश्वर स्पष्ट रूप से कहता है कि ये जो पुत्र पैदा हुआ है, मतलब इश्माएल, ये वो प्रतिज्ञा का पुत्र नहीं है।
हाँ, जिसकी भविष्यवाणी की गई थी।
बिल्कुल, ईश्वर की योजना तो कुछ और ही थी। वो वादा इसहाक के माध्यम से पूरा होना था, जो अगले साल सारा की कोख से जन्म लेने वाला था।
और यहीं से इतिहास दो अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ता है। मतलब डॉक्टर वेनॉय इस बात पर काफी जोर देते हैं कि धर्मग्रंथ के नजरिए से इश्माइल की वंशावली एक तरह से बंद रास्ता बन जाती है, लेकिन भू राजनीतिक स्तर पर इसका असर बहुत विशाल था।
कैसे?
जेनेसिस 25 में जिक्र आता है कि इश्माइल के वंशजों ने एसाफ के वंश के साथ विवाह किया और माना जाता है कि यहीं से अरब राष्ट्रों का उदय हुआ।
ओ, और ये श्रृंखला तो यहीं नहीं रुकती ना, क्योंकि स्रोत में ये भी बताया गया है कि अब्राहम के बाद की पत्नी उम केतुरा, उससे जो वंश चला उससे मिद्यानी राष्ट्र का जन्म हुआ,
हाँ,
और लूथ जो अब्राहम का भतीजा था उसके वंश से अम्मोनी और मुआबी राष्ट्र बने। मतलब ये तो पूरा का पूरा मध्य पूर्व का नक्शा खींचने जैसा हो गया।
बिल्कुल, एक एक पारिवारिक फैसले ने आने वाली सदियों की सभ्यताओं और उनके आपसी संघर्षों की नींव रख दी थी।
और ये सभी राष्ट्र बाद में इसराइल के पड़ोसी और कई बार सबसे बड़े दुश्मन राष्ट्र भी बने।
हाँ, इतिहास की ये पूरी रूपरेखा यही दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति के फैसले पूरी सभ्यताओं के भविष्य को आकार दे रहे थे।
मुझे यहाँ ना एक बात खटक रही है।
क्या?
मतलब ये पूरी स्थिति किसी बहुत ही जटिल पारिवारिक नाटक जैसी लगती है। एक पत्नी का अपनी दासी को देना, फिर सौतन जैसा झगड़ा होना, बच्चों के बीच अधिकारों की लड़ाई,
हाँ,
और फिर राष्ट्रों का बंटवारा। मतलब मैं सोची थी कि क्या बाइबल की ये ऐतिहासिक घटनाएं सिर्फ इन महान लोगों की कमियों और पारिवारिक झगड़ों का दस्तावेजीकरण है।
ये सवाल बहुत लाजमी है,
क्योंकि अगर ये सिर्फ इतिहास है तो इसमें वो ईश्वरीय तत्व कहाँ है?
कोई अलौकिक कार्य तो दिख ही नहीं रहा।
आह,
ये उलझन बहुत स्वाभाविक है और डॉक्टर वैनोय के व्याख्यान का एक मुख्य बिंदु भी यही है।
अगर हम सिर्फ इंसानी कमजोरियों को देखेंगे ना, तो हम असल कहानी से पूरी तरह चूक जाएंगे।
अच्छा,
वैनोय एक डच विद्वान वॉस का हवाला देते हैं। वॉस कहते हैं कि अब्राहम को अपनी ताकत या अपनी चालाकी से उस ईश्वरीय वादे को पूरा करने की अनुमति नहीं थी।
मतलब वो शॉर्टकट नहीं ले सकता था।
बिल्कुल नहीं। इन सभी घटनाओं में जो चीज सबसे स्पष्ट रूप से उभर कर आती है वो ये है कि इतिहास के मंच के पीछे एक अलौकिक शक्ति काम कर रही थी।
ईश्वर खुद?
हाँ, ईश्वर खुद इतिहास को दिशा दे रहा था और इंसानों की भारी गलतियों के बावजूद वो अपनी योजना को आगे बढ़ा रहा था। लेकिन अगर इतिहास के पन्नों में ईश्वर का ये अलौकिक कार्य छिपा है, तो आज के समय में इन हजारों साल पुरानी ऐतिहासिक घटनाओं को कैसे समझा जाए? मतलब हम इनसे क्या निकालें?
इसके लिए इंसान ने इतिहास से अर्थ निकालने के लिए अलग अलग चश्मे या लेंस का इस्तेमाल किया है। इसे समझने के लिए हम जेनेसिस 24 का एक बहुत ही शानदार उदाहरण लेते हैं और फिर देखेंगे कि लोग इसे कैसे कैसे पढ़ते हैं।
जेनेसिस 24 ये पूरी तरह से ईसाक की शादी पर केंद्रित है ना?
हाँ, अब्राहम बहुत बूढ़ा हो चुका है और वो अपने सबसे भरोसेमंद नौकर को मेसोपोटामिया भेजता है
ताकि वो ईसाक के लिए उनके अपने ही लोगों के बीच से एक पत्नी खोज सके।
बिल्कुल। और वो नौकर वहां जाकर एक कुएं के पास रुकता है
और वो एक प्रार्थना करता है।
हाँ, वो ईश्वर से एक बहुत ही विशिष्ट प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, जो लड़की आकर मुझे और मेरे ऊँटों को पानी पिलाएगी वही ईसाक के लिए चुनी हुई लड़की होगी।
और तभी रिबका वहाँ आती है, वो उसे पानी पिलाती है और अचरज की बात है कि वो उसके 10 ऊँटों के लिए भी कुएं से पानी निकालती है,
जो कि बहुत मेहनत का काम है।
बिल्कुल। और अंततः वो ईसाक से विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है।
तो ये एक बहुत ही सुंदर और विस्तृत ऐतिहासिक विवरण है। इसमें उस समय की संस्कृति और यात्राओं का पूरा चित्र मौजूद है।
ये तो किसी ऐतिहासिक फिल्म की स्क्रिप्ट को हूबहू पढ़ने जैसा है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई इतिहासकार सिर्फ ये बताकर रुक जाए कि तो इस तरह ईसाक को अपनी पत्नी मिली, तो क्या ये काफी है?
बिल्कुल नहीं,
क्योंकि इंसान की फितरत है हर चीज में से कोई गहरा अर्थ निकालना, और यहीं से इन ग्रंथों को पढ़ने के 3 अलग अलग नजरियों का जन्म होता है। तो चलिए पहले तरीके की बात करते हैं, जिसे हम एक जादुई पहेली वाला लेंस कह सकते हैं।
हाँ, स्रोत में से रूपकात्मक तरीका या एलिगोरिकल मेथड कहा गया है।
तो ये काम कैसे करता है?
ये तरीका प्रारंभिक चर्चों में बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता था। उस समय के विद्वानों के भीतर ना हर लाइन और हर शब्द में ईश्वरीय रहस्य खोजने की एक गहरी लालसा थी। तो इस तरीके में ऐतिहासिक तथ्यों को उनके सीधे साधे अर्थ से हटाकर उन्हें एक गहरा और रहस्यमयी आध्यात्मिक अर्थ दे दिया जाता है।
तो इस जादुई लेंस से जेनेसिस 24 की कहानी कैसी दिखेगी?
हाँ, बहुत ही अलग दिखेगी। वे कहेंगे कि ईसाक का मतलब सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो मसीही का प्रतीक है।
अच्छा।
रिबका का मतलब है चर्च, और वो जो नौकर है वो असल में एक उपदेशक है जो चर्च को मसीहा तक लाता है।
एक मिनट रुको, और ऊँटों का क्या? मतलब उस कहानी में तो ऊँट भी थे जिन्हें रिबका ने पानी पिलाया था। क्या ऊँटों का भी कोई रहस्यमयी अर्थ निकाल लिया गया?
आप हैरान होंगे, लेकिन हाँ, इस हिस्से में लोगों की कल्पनाएं बहुत दूर तक गईं।
मतलब सच में?
हाँ, कुछ विद्वानों ने कहा कि ऊँट वे आम लोग हैं जिन्हें ईश्वर के वचनों के निर्देश की आवश्यकता है।
अरे बाप रे!
मतलब वे लोग जो खुद ज्ञान का पानी नहीं पी सकते, उन्हें उपदेशक द्वारा पानी पिलाना पड़ता है।
ये तो बहुत ज्यादा हो गया।
और सुनिए, कुछ अन्य लोगों ने ऊँटों की तुलना कानून से कर दी।
कानून? ऊँट और कानून?
हाँ, उनका तर्क था कि जैसे ऊँट बहुत सारा पानी पीते हैं और उनकी प्यास बुझती नहीं, वैसे ही इंसान कभी भी कानून या नियमों की सभी मांगों को पूरा नहीं कर सकता।
ये तो वाकई में हदों को पार करना हो गया। मतलब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई किसी म्यूजियम में जाए, एक खूबसूरत प्राकृतिक पेंटिंग देखे जिसमें एक साधारण सा पेड़ बना हो, और वो कहे कि अरे, ये पेड़ असल में पूंजीवाद का प्रतीक है और इसके गिरते हुए पत्ते शेयर बाजार के क्रैश होने को दर्शाते हैं। मतलब क्या ये वाकई में किसी पाठ से अर्थ निकालना है, या फिर जबरन अपनी मनगढ़ंत सोच को उसमें ठूसना है?
हाँ, तकनीकी भाषा में इस जबरदस्त सोच ठूसने को आईसीजेसिस कहते हैं।
आईसीजेसिस?
जिसका सीधा मतलब है टेक्स्ट के बाहर से अपना अर्थ टेक्स्ट के अंदर डालना। डॉक्टर विनो स्पष्ट करते हैं कि जब ये रूपकात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है तो ऐतिहासिक तथ्य अपना असली महत्व पूरी तरह खो देते हैं।
बिल्कुल, कहानी में असल में क्या हुआ, वो कुआं कहाँ था, रिबेका ने कितनी मेहनत की, ये सब तो मायने ही नहीं रखता फिर।
एकदम सही, मायने सिर्फ वो आध्यात्मिक कल्पना रखती है जो पढ़ने वाले ने उस पर चिपका दी है।
लेकिन तो क्या इसका मतलब ये है कि धर्म ग्रंथों में कहीं भी रूपक नहीं है?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूपक मौजूद हैं और उन्हें उसी रूप में पहचाना भी जाना चाहिए।
जैसे कि?
उदाहरण के लिए यशाया 5 में एक अंगूर के बाग की कहानी है जिसे बाड़ लगाकर सुरक्षित किया गया है। वहाँ पाठ खुद स्पष्ट करता है कि वो बाग इसराइल राष्ट्र का प्रतीक है।
अच्छा, तो जहाँ रूपक है वहाँ टेक्स्ट खुद बता देता है।
बिल्कुल, लेकिन समस्या तब विकराल हो जाती है जब लोग हर एक ऐतिहासिक घटना, हर एक साधारण सी बात को एक रूपक या रहस्यमयी कोड मान लेते हैं।
समझ गए। तो अगर ये जादुई पहेली वाला लेंस सही नहीं है तो लोग किस दूसरे चश्मे का इस्तेमाल करते हैं? स्रोत में इसके बाद एक सेल्फ हेल्प किताब वाले लेंस का जिक्र आता है।
हाँ, जिसे उदाहरणात्मक दृष्टिकोण या एक्सप्लेनरिस्टिक अप्रोच कहा गया है। ये तरीका आज भी बहुत लोकप्रिय है।
इसमें क्या होता है?
इसमें पुरानी कहानियों को महान लोगों की सफलताओं और विफलताओं के एक संग्रह के रूप में देखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य इतिहास से क्या करें और क्या ना करें की एक सूची तैयार करना होता है,
ताकि हम उनसे नैतिक शिक्षा ले सकें।
बिल्कुल।
तो अगर हम फिर से इसाक और रिबका वाली कुएं की कहानी को इस सेल्फ हेल्प वाले चश्मे से देखें तो हम क्या सीखेंगे?
इस चश्मे से देखने वाला व्यक्ति कहानी को कई नैतिक नियमों में बांट देगा।
जैसे?
वो कहेगा कि देखिए, अब्राहम ने इसाक की शादी अपने ही लोगों में तय की, इसलिए बच्चों की शादी समान आस्था वालों के बीच ही होनी चाहिए। या फिर जैसे नौकर ने जीवन साथी खोजने के लिए प्रार्थना की, वैसे युवाओं को भी जीवन के हर बड़े फैसले से प्रार्थना करनी चाहिए।
और शायद ये भी कि बेटियों को रिबका की तरह निस्वार्थ सेवा भाव रखना चाहिए, जो अजनबियों को पानी पिलाने के लिए तुरंत तैयार हो गईं।
हाँ बिल्कुल।
ये सब सुनने में बहुत अच्छा और संस्कारी लगता है, लेकिन मुझे इसमें एक बहुत बड़ी तार्किक खमी नजर आ रही है।
वो क्या?
जरा सोचिए, उसी कहानी में अब्राहम के नौकर ने भगवान से एक विशेष चमत्कारिक संकेत मांगा था।
हाँ, ऊँटों को पानी पिलाने वाला।
बिल्कुल, उसने शर्त रखी थी कि जो लड़की खुद आगे बढ़कर पानी पिलाएगी वही सही जीवन साथी होगी। तो क्या आज के समय में भी अगर किसी को जीवन साथी चुनना हो तो उसे किसी बस स्टैंड या कैफे में जाकर ऐसे ही चमत्कारिक संकेत मांगने चाहिए?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
वही तो, कोई ये कैसे तय करेगा कि कहानी का कौन सा हिस्सा हमारे लिए आज एक नियम है और कौन सा हिस्सा सिर्फ उस समय की एक घटना?
यही तो सबसे बड़ी उलझन है। और मजेदार बात यह है कि डॉक्टर विनॉय भी ठीक इसी बात पर उंगली रखते हैं। इस तरीके की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये तय करना पूरी तरह से पढ़ने वाले की मनमर्जी पर निर्भर हो जाता है।
ये बहुत ही मनमाना तरीका है।
हाँ, इसके अलावा विनॉय एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक सिद्धांत की ओर इशारा करते हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि अब कैनन पूरा हो चुका है।
इस कैनन पूरा हो चुका है वाले विचार को थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं, इसका असल में मतलब क्या है?
इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे कोई बहुत महत्वपूर्ण किताब छप चुकी है और अब उसमें नए पन्ने नहीं जोड़े जा सकते।
अच्छा।
ईश्वर का जो आधिकारिक संदेश या मार्गदर्शन था वो धर्म ग्रंथों के रूप में पूरा हो चुका है।
तो मतलब अब हमें नए संकेतों की जरूरत नहीं है।
एकदम सही। इसलिए आज के समय में अब्राहम के नौकर की तरह व्यक्तिगत चमत्कारिक संकेतों की उम्मीद करना या ये सोचना कि ईश्वर रोजमर्रा के फैसलों में वैसे ही सीधे हस्तक्षेप करेगा, ये सही नहीं है। ये एक तरह की ऐतिहासिक नासमझी है।
तो इस सेल्फ हेल्प वाले नजरिए की सबसे बड़ी खामी क्या निकल कर आती है?
इसकी सबसे बड़ी खामी ये है कि ये पूरी तरह से मानव केंद्रित हो जाता है।
मतलब ये ईश्वर पर फोकस नहीं करता।
बिल्कुल, ये इतिहास के मंच से ईश्वर के महान कार्यों को हटाकर सिर्फ इंसान के कार्यों पर स्पॉटलाइट डाल देता है। सारा ध्यान इस पर होता है कि अब्राहम ने क्या किया या रिबका ने क्या किया,
और मुख्य सूत्रधार को किनारे कर दिया जाता है।
हाँ, ये तरीका एक महान और निरंतर चलने वाले इतिहास को केवल छोटी छोटी स्वतंत्र नैतिक कहानियों के एक संदूक में बदल देता है।
तो अब हमारे सामने एक अजीब सी स्थिति है। एक तरफ वो जादुई पहेली वाला लेंस है जो इतिहास को एक रहस्यमयी कोड बना देता है। लेंस है जो इतिहास को सिर्फ नैतिक कहानियों की किताब में बदल देता है। इन दोनों में ही इतिहास का असली महत्व तो कहीं खो ही जाता है।
सही बात है।
तो फिर सही चश्मा कौन सा है? इन ऐतिहासिक घटनाओं का असली अर्थ कैसे निकाला जाए?
इसी सवाल के जवाब में डॉक्टर वेनॉय सबसे संतुलित तरीके को पेश करते हैं। इसे हम विशाल महाकाव्य या कॉस्मिक स्क्रिप्ट का लेंस कह सकते हैं।
अच्छा।
स्रोत में इसे मुक्ति ऐतिहासिक दृष्टिकोण या रिडेम्प्टिव हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कहा गया है।
तो ये कॉस्मिक स्क्रिप्ट वाला नजरिया असल में कैसे काम करता है?
ये दृष्टिकोण ये मानता है कि धर्म ग्रंथ केवल मनुष्यों के कार्यों का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये इस बात पर केंद्रित है कि ईश्वर मानव इतिहास में क्या कर रहा है। ये इतिहास को अलग अलग कहानियों के रूप में नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली और युगों लंबी योजना के रूप में देखता है, जो अंततः मानवता की मुक्ति की ओर जाती है।
तो अगर हम जेनेसिस 24 के उसी कहानी को लें, जहां एक नौकर कुएं पर पानी मांग रहा है, इस तीसरे लेंस से देखने पर कहानी कैसे बदल जाती है?
तब हम ये नहीं देखेंगे कि अब्राहम कितना बुद्धिमान था या रिबका कितनी अच्छी और संस्कारी थी।
तो हम क्या देखेंगे?
इसके बजाय हम बहुत पीछे जाएंगे और देखेंगे कि जेनेसिस 3:15 में एक प्राचीन प्रतिज्ञा की गई थी कि एक वंश आएगा जो बुराई को कुचल देगा।
ओह, और ईसाक का विवाह होना असल में उस वादे की कड़ी को टूटने से बचाने का ईश्वरीय कार्य है।
बिल्कुल, अगर ईसाक की शादी नहीं होती तो वो वंश आगे नहीं बढ़ता। इसलिए कुएं पर जो हुआ वो सिर्फ एक लड़के लड़की का मिलना नहीं था, वो एक ऐतिहासिक ईश्वरीय योजना का आगे बढ़ना था।
मतलब इसमें मुख्य सूत्रधार ईश्वर है और इंसान सिर्फ उस योजना के पात्र हैं।
एकदम सही।
ये वाकई में कहानी को देखने का एक बहुत बड़ा और विशाल नजरिया है। लेकिन जब हम इतिहास की असलियत की बात करते हैं, तो स्रोत में एसआर ड्राइवर नाम के एक विद्वान का जिक्र आता है।
हाँ, एसआर ड्राइवर।
उनका नजरिया थोड़ा अलग था ना? वे इतिहास की प्रामाणिकता को लेकर कुछ और ही सोचते थे।
हाँ, एसआर ड्राइवर विलहोसन स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म के एक प्रमुख विचारक थे। उनका विचार बहुत ही क्रांतिकारी था, लेकिन काफी विवादास्पद भी।
वो क्या मानते थे?
उनका मानना था कि ये जो बाइबल की घटनाएं हैं, जैसे अब्राहम का जीवन या ईसाक की शादी, ये सच में इतिहास में घटित हुई या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मतलब उनके लिए सिर्फ मिथक थे?
हाँ, उनके लिए सिर्फ किंवदंतियां या मिथक हो सकते हैं। ड्राइवर का कहना था कि महत्वपूर्ण बात सिर्फ वो नैतिक या आध्यात्मिक शिक्षा है जो इन कहानियों से मिलती है। वे इतिहास और नैतिकता को पूरी तरह से अलग कर देते थे।
लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा और तीखा सवाल उठता है।
बताइए।
अगर किसी विचार या धर्म की ऐतिहासिक नींव ही काल्पनिक है, तो क्या उस पर बना हुआ विश्वास का महल टिक सकता है? मतलब अगर अब्राहम सच में कभी था ही नहीं और ईसाक की शादी उस कुएं पे सच में नहीं हुई थी, तो क्या वो वाकई में ईश्वर का एक महान कार्य था या सिर्फ इंसान के दिमाग की एक अच्छी उपज? हम पंचतंत्र की कहानियों से भी तो बहुत अच्छी नैतिकता सीखते हैं।
बिल्कुल।
लेकिन हम ये तो नहीं मानते ना कि वे जानवर सच में बोलते थे।
ये तुलना बहुत ही सटीक है और डॉक्टर वेनॉय एसआर ड्राइवर के इस विचार को पूरी तरह से खारिज करते हैं। वेनॉय स्पष्ट करते हैं कि सिद्धांत इतिहास पर आधारित है। इतिहास सिद्धांत का सिर्फ एक उदाहरण नहीं है।
इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सिद्धांत और इतिहास का ये रिश्ता इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
क्योंकि अगर घटना सच में नहीं घटी तो उससे मिलने वाला सिद्धांत भी खोखला है। आप किसी को भी एक कल्पित कहानी सुनाकर नैतिकता सिखा सकते हैं, जैसे आपने पंचतंत्र का उदाहरण दिया।
हाँ।
लेकिन इन धर्म ग्रंथों का दावा सिर्फ नैतिकता सिखाना नहीं है।
तो फिर क्या है?
इनका दावा यह है कि ईश्वर ने वास्तविक समय, वास्तविक भूगोल और वास्तविक लोगों के जीवन में हस्तक्षेप किया है। अगर ईश्वर ने सच में लाल सागर को दो हिस्सों में नहीं बांटा, या अगर उसने सच में अब्राहम को नहीं चुना, तो फिर वो एक बचाने वाला ईश्वर नहीं है, वो सिर्फ एक दार्शनिक विचार है।
और एक दार्शनिक विचार किसी की मुक्ति नहीं कर सकता।
बिल्कुल सही कहा आपने।
ये बहुत ही शक्तिशाली बिंदु है। मतलब इतिहास सच होना ही चाहिए, तभी वो वादा सच हो सकता है। मुझे याद आ रहा है, स्रोत में पीटर और पॉल के उपदेशों का भी उदाहरण दिया गया है,
जो इस बात को और पुख्ता करते हैं।
हाँ बिल्कुल। जब पीटर और पॉल ने प्रारंभिक काल में उपदेश दिए, तो उन्होंने लोगों को सिर्फ नैतिक कहानियां नहीं सुनाई, उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों को पूरी ताकत से दोहराया। उन्होंने बताया कि कैसे ईश्वर ने अब्राहम को बुलाया, कैसे वो इसराइल को मिस्र की गुलामी से बाहर लाया।
मतलब उनका पूरा का पूरा संदेश इन ठोस ऐतिहासिक तथ्यों पर ही टिका हुआ था। हाँ, उनके लिए इतिहास सिर्फ एक पृष्ठभूमि नहीं थी, बल्कि वही मुख्य संदेश था।
तो क्या इस पूरी चर्चा का मतलब ये है कि हमें पुरानी कहानियों से कोई नैतिक शिक्षा लेनी ही नहीं चाहिए? क्या नैतिकता का कोई स्थान ही नहीं है?
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर वेनॉय बहुत ही संतुलन के साथ कहते हैं कि नैतिक शिक्षाओं और इस विशाल ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बीच कोई दुश्मनी नहीं है।
अच्छा,
नैतिक शिक्षाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन्हें हमेशा इस बड़ी मुक्ति ऐतिहासिक योजना के ढांचे के भीतर रखा जाना चाहिए।
मतलब हमें पहले वो बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए और फिर उसमें से अपने लिए सबक सीखना चाहिए।
एकदम सही। स्रोत में रोमियो 4, इब्रानियो 11 और जेम्स 2 का हवाला दिया गया है, जहां अब्राहम के विश्वास को एक महान उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो विश्वास इसलिए महान नहीं था क्योंकि अब्राहम एक बहुत अच्छा इंसान था।
तो फिर क्यों महान था?
वो इसलिए महान था क्योंकि उसने ईश्वर की उस ऐतिहासिक मुक्ति की योजना पर भरोसा किया था, तब भी जब परिस्थितियां पूरी तरह से असंभव लग रही थी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इतिहास को सिर्फ अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई नैतिक कहानियों के रूप में या किसी रहस्यमयी पहेली के रूप में नहीं देख सकते।
डॉक्टर विनॉय का अंतिम निष्कर्ष भी यही है कि पुराने ऐतिहासिक पाठ केवल रहस्यमयी कोड या क्या करें क्या ना करें की सूची नहीं है।
हाँ,
वे एक बहुत बड़ी सच्ची और युगों लंबी ऐतिहासिक योजना का दस्तावेज हैं, जहां ईश्वर मुख्य सूत्रधार हैं और इंसान उस विशाल नाटक के पात्र। जब हम उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं, तभी वो साधारण सी लगने वाली कहानियां अपना सच्चा और पूरा अर्थ प्रकट करती हैं।
वाकई, और इस गहन चर्चा के अंत में इन सभी लेंसों और नजरियों को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा विचार मेरे मन में आ रहा है।
क्या विचार है?
जरा सोचिए, अगर इतिहास के उन बहुत ही साधारण से लगने वाले पलों में, जैसे कोई थका हुआ यात्री किसी अजनबी लड़की से कुएं पर पानी मांगता है और वो उसे पानी पिला देती है, अगर उस एक छोटे से पल में एक विशाल और युगों लंबी योजना का हिस्सा बुना जा रहा था जो पूरी मानव जाति का भविष्य बदलने वाली थी, तो क्या आज भी ऐसा ही कुछ हो रहा है?
ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। हम अक्सर अपने जीवन को टुकड़ों में देखते हैं, बिना किसी बड़े संदर्भ के।
बिल्कुल, और ये हमें इस बात पर विचार करने के लिए छोड़ जाता है कि क्या हमारे जीवन की साधारण, छोटी और महत्वहीन लगने वाली घटनाएं भी किसी ऐसी ही विशाल और अलिखित योजना का हिस्सा हो सकती हैं?
बिल्कुल हो सकती हैं।
शायद इतिहास को एक गुजरावा कल नहीं है जिसे हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, शायद ये एक ऐसा विशाल और जटिल नक्शा है जिसे हम आज भी जी रहे हैं और जिसके हर छोटे पन्ने का अपना एक बहुत बड़ा और अनजाना अर्थ है।